शैतान की आवाज कौन सी होती है? इसकी भी एक आवाज है। असल में वो उसकी आवाज तो हम सुन नहीं सकते, पर वो कुछ आवाजों को जरिया बनाता है, उनको टूल बनाता है, वो उसका मेथड है हम तक पहुंचने का। और उनमें कौन सी आवाजें हैं? जो भी आवाज अल्लाह की नाफरमानी की तरफ बुलाने वाली है वो आवाज शैतान की आवाज है। मुफस्सिरीन, सहाबा मुफस्सिरीन ने, ये अब मेरी बात नहीं हो रही, मैं अपनी बात नहीं कर रही, सहाबा जो बड़े बड़े इब्ने अब्बास हैं, मुजाहिद हैं, बड़े बड़े जो सहाबा कराम, और ये तो ताबई हैं, खैर मुफस्सिर कुरान है बहुत बड़े, लेकिन इब्ने मसूद हैं, इब्ने अब्बास का तो आपको पता है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की थी कि अल्लाह ताला इनको कुरान का फहम अता फरमा, ये इल्म अता फरमा, तो उनके लिए खास खसूसी दुआ है। उन्होंने इसकी क्या इंटरप्रिटेशन की है, कि तफसीर क्या की है, कि सऊत, शैतान की सऊत क्या है? उन्होंने कहा कि शैतान की सऊत है गाने बजाने बाजे म्यूजिक, ये शैतान की सऊत उन्होंने कहा है। अब आप कहेंगे नहीं जी ऐसे ही पता नहीं, म्यूजिक के पीछे पड़े हुए हैं, तो कोई पेड़ नहीं हुआ, ये तो सहाबा ने तफसीर की है। वैसे तो हर आवाज जो अल्लाह ताला की मासीयत की तरफ, नाफरमानी की तरफ बुलाए, वो शैतान की आवाज, उसमें जितनी फोहश बातें हैं, बेशर्मी बेहयाई की बातें, झगड़े गालियां, जितनी भी ऐसी आवाजें हैं जो इंसान को गुमराह करने वाली है, वो सब उसमें आ जाती है। लेकिन जब हम तफसीर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सहाबी ने या सहाबा कराम ने तफसीर में इसकी कहा कि शैतान की बेसिक आवाज म्यूजिक है, म्यूजिक। अब म्यूजिक कैसे इसकी आवाज हो गई? ऐसे तो हम बाकी भी चीजों के ऊपर बात करेंगे कि कैसे और भी आवाजें हैं, लेकिन शैतान की जिनके अंदर ये झगड़े और ये सारी बातें आ जाती हैं, लेकिन पहले म्यूजिक के ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए जब इंसान म्यूजिक सुनता है ना, तो उसके असरात इंसान के ऊपर होते हैं। अब वो कोई लोग कहते हैं नहीं हमारे पर तो कोई असर नहीं होता। आप ये देखें कि ये किसी भी मूवी में कितना सारा म्यूजिक होता है, रोमांटिक सीन का अलग म्यूजिक है, सैड सीन का अलग म्यूजिक है, जब डरावने सीन आते हैं उनके अलग म्यूजिक है, और जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है तब अलग म्यूजिक है, क्योंकि हर म्यूजिक के डिफरेंट इम्पैक्ट है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है म्यूजिक इंडस्ट्री, वो उस पूरी मूवी के ऊपर डिफरेंट म्यूजिक सेट करते हैं उसके पीछे, क्योंकि उसे इम्पैक्ट करते हैं। उसी सीन को आप आवाज बंद करके देखें, वो ड्रामा है मूवी जो भी है, तो वो इम्पैक्ट नहीं आता, वो चाहे कोई डरावना सीन हो कोई इम्पैक्ट ही नहीं आता, लेकिन जब वो ऐसी आवाजें पीछे कर रहे थे तो दिल वैसे ही धक धक करना शुरू हो जाता। और तमाम जो आइम्मा कराम है, तमाम फिकही मजाहिब है, उन सब में म्यूजिक को हराम करार दिया। हनफी मजहब में तो इतनी ज्यादा ममानियत है कि ये कहा गया कि जो म्यूजिक सुनता है ना सिर्फ ये कोई वो हराम है ये काम करना, बल्कि इस बंदे की तो गवाही भी कबूल नहीं है जो म्यूजिक सुनता है। म्यूजिक इंडस्ट्री को आप उठा के देखें, म्यूजिक के साथ क्या बातें की जाती हैं? हराम रिलेशनशिप की बात, आशिकी की बात, बंदगी की बात, तू मेरी जिंदगी तू मेरी फलां, ये बातें ये कोई अपनी बीवी के लिए नहीं कह रहा होता, महबूबा के लिए कह रहे होते, अल्लाह ताला की बंदगी से दूर करके और किसी और तरफ ही दिमाग को। जो ही आप वो म्यूजिक और वो सारी शायरी सुनते हैं ना, आपके अंदर जो जज्बात हैं, आपकी जो तबीयत है, उसके अंदर एक असर होता है, इंसान झूमना शुरू हो जाता है, इंसान की एक जैसे एक सरूर किसी कैफियत जहन पे आ जाती है, इंसान के अंदर रोमांटिक जज्बात उभरने लगते हैं, सेक्सुअल जज्बात उभरने लगते हैं। रैप म्यूजिक को उठा के देख लें, गालियों से भरा हुआ है, हार्ड रॉक को उठा के देख लें, उसमें शैतानी बातों से भरा हुआ। तो अब लोग कहते हैं अब हम क्या करें, हम तो म्यूजिक से आज बच ही नहीं सकते, जिधर जाएं म्यूजिक है, उधर भी म्यूजिक, उधर ठीक है आपकी बात सही है, अब ग्रोसरी करने जाए वहां पे म्यूजिक, अब रेस्टोरेंट में बैठे वहां म्यूजिक, अब क्या करें? वो कहते हैं जी कि ये आप क्या बात करते हैं, हम आप क्या जीना छोड़ दें, क्या करें? तो एक हदीस से हमें पता चलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में जब बांसुरी की आवाज आई थी तो आपने अपने कानों में उंगली उंगलियां ठूंस ली थी, और हजरत इब्ने अब्बास से फरमाया कि क्या ये आवाज बंद हो गई? उन्होंने कहा नहीं, तो आपने ठूंस ही रखी, और फिर जब उन्होंने कहा कि हाँ बंद हो गई तो फिर आपने उंगलियां निकाली। इससे क्या पता चला? वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकवा इतना ज्यादा था कि आपने कानों में उंगलियां डाल ली, लेकिन इब्ने अब्बास से ये नहीं कहा कि आप उंगलियां डाल लें। तो इससे पता चलता है जहां पे मजबूरी है आप कोशिश तो ऐसी करें कि ऐसी जगहों पे जाना ही ना पड़े, चले गए हैं तो कोशिश करें कि वहां पे आप उनको बहुत नाइसली रिक्वेस्ट करें कि जी आप ये बंद कर दें, नहीं तो कम से कम इतना हल्का कर दें। और अगर ये भी नहीं कर सकते, मसलन एयरपोर्ट्स हैं, मसलन जहाजों के अंदर लगा हुआ है, मसलन ऐसी जगह जहां पे आपको कोई बस ही नहीं है, तो आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं करें, तवज्जो करके उसको कि मैं भी बड़ा मजा लूं, जरा मुझे पुरानी यादें आ रही हैं, हाँ ये गाना तो मैंने सुना हुआ था, खुद भी गुनगुनाना है, मैं क्या करूं जी मेरी मजबूरी, ये नहीं करना। आप तब तक गुनाहगार नहीं होंगे जब तक आप मजबूर हैं और आप उस पर कान नहीं धर रहे, क्योंकि इमाम इब्ने तैमिया कहते हैं कि म्यूजिक का ताल्लुक इस्तेमा से है, यानी आप गौर से जब सुनेंगे तो उसके ऊपर गुनाह है, जैसे कि कुरान को जब आप गौर से सुनते हैं तो उसके ऊपर अजर है, इसी तरह म्यूजिक लगा हुआ है ना, और आप अगर इस पे कान नहीं धरते, वो बैकग्राउंड में लगा हुआ तो, और आप मजबूर है वहां पे, आपका बस भी नहीं चलता, तो तब तो आप इससे आपको इंशाल्लाह गुनाह नहीं होगा। और वैसे ही देखें जहां पे हमारा थोड़ा बहुत भी बस चलता है तो हम थोड़ी कोशिश तो किया करें, थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत तो लेकर आए, थोड़ा सा इस चीज को यानी नापसंदगी का इजहार तो करें, क्योंकि खास तौर पे ये बिजनेसेस है ना, ये तो देखते हैं हमारे कस्टमर को क्या चीज अच्छी लगती है, अगर आप नाइसली उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको जरा कम कर लें, इस रेस्टोरेंट में गए या आप किसी स्टोर में, आप यहाँ किसी, आप बोल नहीं सकते, किसी कार्ड वगैरह पे लिख के आप उनको दे सकते हैं, मसलन आप कह सकते हैं एलिमिनेशन ऑफ म्यूजिक विल मेक द सर्विस ऑफ योर स्टोर मोर प्लेजरेबल फॉर अस, फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई बात लिख सकते हैं ना, कोई बड़ी नाइस सी, ये नहीं आपने लिखना हमारे इस्लाम के अंदर ये हराम है, उनको क्या, वो कहते हैं हमारे के, हमें क्या तुम्हारे इस्लाम में जो भी है, नहीं आप उसको बताएं कि देखो तुम्हारे कस्टमर पे इसका कितना इफेक्ट होता है। तो ये तो आपको पता है कि मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज में होता है कि कैसे हम कस्टमर को प्लीज करें। तो आपका ये कहना और बहुत सारे लोग अगर कहते हैं तो देखें कुछ ना कुछ तो असर हो सकता है, अगर नहीं भी कोई असर होता कम से कम आप इससे बरी जिम्मा हो जाते हैं, आपके पास हुज्जत है कि मैंने कहा था, क्योंकि ये वाकई ही एक प्रूवन फैक्ट है, साइकोलॉजिस्ट की रिसर्च है और भी रिसर्चेस हैं कि म्यूजिक जितना हमारी सोच को इफेक्ट करता है कोई और चीज नहीं करती, और लोगों को पता भी नहीं चलता कि कैसे ये आपको इफेक्ट करता है, इसकी फ्रीक्वेंसीज कैसे इफेक्ट करती है, ये आपके इमोशंस को कैसे कंट्रोल करता है, और ये जितने भी लोग हैं कि किस तरह से इसमें ऐसी शायरी भी करते हैं, आप देखें आज ये नौजवानों ने जो पैंट्स फाड़ी हुई है, जंजीरें पहनी हुई है, या डिप्रेस रहना, एंग्जाइटी, या यहां से अपने आप को काट रहे हैं या वहां से काट रहे हैं, आप देखें तो ये सिंगर्स पीछे ही उनकी ये तरीके हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं तो उन्हीं जैसे फिर हुलिये बना लेते हैं, और इनसे बचना चाहिए। सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की इजाजत है, वो है दफ, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी बजी थी, और वो भी किसी खुशी के मौके पे, जैसे ईद है उसके ऊपर आप बजा सकते हैं, शादी है उस पर बजा सकते हैं, और उसमें भी ध्यान ये रहे कि शायरी भी ऐसी ना हो जिसके अंदर कुछ और ही पता नहीं क्या कहते रहे, वो भी पाक साफ अशआर हो, बाकी कोई भी चीज इनमें से अलाउड नहीं है। अगर बांसुरी की आवाज पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानों में उंगलियां दे दे दी थी तो इतनी हद तक आपको म्यूजिक से नफरत थी, तो हम जो उनके पैरोकार हैं हम कहें हमें तो ये बहुत अच्छा लगता है, अपने बच्चों को म्यूजिक क्लासेस में डालते हैं लोग, पियानो सीख रहा है फलां, ड्रम बजाना सीख रहा है जी मेरा बच्चा, उसे तो बड़ा फखर हो रहा है जी मेरे बच्चे को ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, ये फखर की बात नहीं, ये तो नफरत करने की बात है, आपके नबी उससे नफरत करते हैं, आपको उससे मोहब्बत है, पता नहीं हमारी कैसी मोहब्बत है अपने नबी से, क्या आप गुनगुना सकते हैं? हाँ इसकी इजाजत है, अगर साथ म्यूजिक नहीं है एक शोहर अपनी बीवी के लिए गुनगुना सकता है, बीवी अपने शोहर के लिए कुछ गुनगुना सकती है। हजरत उमर बिन खत्ताब से भी कुछ रिवायात ऐसी मिलती हैं कि गुनगुनाना मुसाफिर का साथी है, और इसका मतलब ये भी नहीं है। औरतें कुछ सोचे कि अच्छा बगैर म्यूजिक के गाना ठीक है, तो हम अब स्टेजों पर चढ़ के और आदमियों के सामने हम शुरू कर दें गाना। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में शायरी करा करती थी। तो हमें समझना चाहिए कि कहाँ हमारी लिमिटेशंस हैं, कहाँ पे हमें कितनी किस हद तक इजाजत है, ये हमें समझना चाहिए। ना तो ऐसी इजाजत है कि खुला खुला हमारे यहाँ जो हो रहा है ऐसा लगता ही नहीं है कि इनके दीन के अंदर, बल्कि अभी तक लोग बहस में लगे हैं कि अभी म्यूजिक भी कुछ मना है, म्यूजिक भी कुछ हराम चीज है, म्यूजिक की कितनी इजाजत है और कितनी नहीं है कुछ पता नहीं। हर जगह म्यूजिक, और बल्कि कोई कह दे सही कि अगर ये तो नहीं सही है तो उसके साथ कैसे नजरों से देखा जाता है उसको। बाज नातों के साथ ऐसा म्यूजिक है। अब वो अशार बाज दफा अच्छे भी होते हैं लेकिन उनके साथ म्यूजिक डाला। अब हम कहते हैं हमारे हनफी फिक को हम फॉलो करते हैं, कोई कहता है हम शाफी को फॉलो करते हैं, जी तमाम में ही हराम है। अब आप जाएंगे किधर? इन आप कोई फिक ला के दिखाएं जिसके अंदर ये कहा गया हो कि हाँ भी ठीक है। लेकिन आज ऐसे आपको मिल जाती हैं जगह जहां पे आपको ये भी हलाल ये भी हलाल, तो वहां पे तो हर चीज ही हलाल है। उनको अगर आपने देखना है तो फिर आज के आपको मॉडर्न ऐसे लोग मिल जाएंगे, स्कॉलर भी उनको नहीं कहना चाहिए, जो ये इन चीजों को सब कोई हलाल कह देंगे। किस चीज से उनकी फॉलोइंग बढ़ती है, किस चीज से उनकी फैन ज्यादा हो जाते हैं, वो सारे फतवे दे देंगे। अब इसमें जिना की तरफ भी इंसान को ले जाया जाता है। उसके बाद उसके जब वो जज्बात उभरते हैं तो उसकी नजरें फिर रुकती थोड़ी है, फिर उसकी नजरें उस हसीन चेहरे पे भी जाएंगी, उसके ऊपर भी जाएंगी, ये भी जाएंगी, सबके ऊपर जा रही। उसके अंदर वो जज्बात, आप लस्टफुल जज्बात जब उनको इंस्टिगेट करती है शायरी और म्यूजिक, ऐसे ही तो नहीं इंसान थरकना शुरू कर देता, ऐसे ही तो नहीं इंसान के पूरे वजूद पे असर आता, दिमाग उस पे लगता है। तो फिर भी समझ नहीं आती कि क्या चीज है जो हमें, क्योंकि हमें हमारा दिल करता है ना, जो दिल करता है वो करना है, क्या हमने वो करना है जो दिल करता है या वो करना है जिसमें अल्लाह की मर्जी।